नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से कक्षा में अंतरिक्ष यान को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाने के लिए दो उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े को पार कर विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचा। पंजाब और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में कपूरथला से 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कल तक शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी। और खेलों में मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हराया। और हॉकी इंडिया लीग में आज शाम राउरकेला में उत्तर प्रदेश रुद्रास का मुकाबला वेदांता कलिंगा लांसर से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से दो उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह कक्षा में अंतरिक्ष यान की डॉकिंग अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया को दर्शाएंगे। प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C60 और इन दोनों उपग्रह XDX-1 और XDX-2 को 476 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा और स्पेस डॉकिंग की प्रायोगिक प्रक्रिया पूरी करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
स्पार्टेक स्पेस डॉकिंग प्रयोग की सफलता के बाद भारत एक ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसको ये क्षमता होगी कि वह उपग्रह को निर्धारित कक्षा में पहुंचाकर उसे स्थिर रख सके। भविष्य में भारत चंद्रमा या अन्य ग्रह को गगनयानी पहुंचाने के लिए ये टेक्नोलॉजी मददगार होगी। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र बनने के बाद गगनयानी उपग्रह द्वारा यहां ठहर पाने के लिए टेक्नोलॉजी आवश्यक होगी। अपने आवश्यकता के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में रोके रखना और दो उपग्रहों के बीच समन्वय रखना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार असाधारण वृद्धि दर्ज करते हुए 700 बिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। इससे भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। 2014 से 2024 के दशक में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 709 बिलियन डॉलर का हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 2014 के 71वें स्थान से छलांग लगाते हुए भारत 2018 में 39वें स्थान पर पहुंच गया। ये बुनियादी ढांचा बाजार के आकार और नवाचार में वृद्धि को दर्शाता है।
भारत आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश ने लॉजिस्टिक्स से लेकर नवाचार, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक के क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। 2015 और 2018 के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने 42 रैंक की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसने भारत को निवेश के लिए अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। इस साल भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया है। इसके अलावा भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में भी वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है और यह एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। वहीं भारत के शिक्षा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के अनुसार भारत के अब 7 संस्थान एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में अपना स्थान बना चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी आम बजट 2025-26 के मद्देनजर आज नई दिल्ली में 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, आर्थिक कार्य सहित कई विभागों के सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किए जाने की आशा है। ये वित्त मंत्री सीतारामन का लगातार 8वां बजट होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज एक दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे आसूरा में श्री धर्मपुर तीर्थ स्थित श्रीमद राजचंद्र आश्रम के वार्षिक समारोह में शामिल होंगे और राज्य सभागृह में महाभिषेक आयोजन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से कतर की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों को राजनीतिक, व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा। इसके अलावा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में बिहार और पंजाब पुलिस के संयुक्त दलों ने कपूरथला से बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक गैर सरकारी संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। पीड़ितों को बंधक बनाने वाले दो ठेकेदार अभी फरार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नाबालिगों में से एक के परिजन ने सीतामढ़ी जिले के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार इन बचाए गए लोगों में से 8 नेपाल के और 22 बिहार के सीतामढ़ी जिले के बताए गए हैं। पुलिस टीम का नेतृत्व करने वाले डीएसपी दीप करण ने आकाशवाणी को बताया,
बिहार के सीतामढ़ी जिला में 2 एफआईआर दर्ज हैं, जो कि बाल मजदूरी के संबंध में हैं, जिसके संबंध में कल बिहार पुलिस ने सदर कपूरथला पुलिस की फोर्स के साथ कुछ रेड किए, जिसमें 11 बच्चों को बरामद किया गया। उन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड के पेश करने के बाद उनको अपने घर पहुंचने में मदद की जाएगी। जो ठेकेदार इनको यहाँ पे लाने के लिए जिम्मेदार थे, उनकी तलाश अभी जारी है।
नाबालिगों की उम्र 12 से 16 साल के बीच है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
पंजाब में किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर कई जगहों पर किए गए बंद के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर रेल और सड़क यातायात भी बाधित रहा और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। किसानों ने कई सड़कों पर धरना दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच भारतीय रेलवे ने 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। यूनियन ने आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान किया है। रद्द की गई ट्रेनों में दिल्ली और पंजाब के बीच चलने वाली शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा भी कई ट्रेनें शामिल हैं। उत्तर रेलवे के अनुसार 13 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। तेलंगाना विधानसभा ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक विशेष सत्र में आज विधायकों ने केंद्र को डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने अलग तेलंगाना राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हैदराबाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का एकजुट संकल्प लिया। विधायकों ने इसके लिए सरकार के प्रस्ताव को भी समर्थन दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का कल 100 वर्ष की आयु में जॉर्जिया के प्लेन स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वे मेलानोमा त्वचा कैंसर से पीड़ित थे। श्री कार्टर भारत की यात्रा करने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1977 से 1981 तक रहा। उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिमी कार्टर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे एक महान दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने भारत अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाया। मुंबई की भारतीय नौसेना बाल विद्यालय की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने 17 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतरोही बनने का गौरव हासिल किया है। वे 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। एक रिपोर्ट।
काम्या ने 24 दिसंबर को चिली के मानक समयानुसार शाम 5:20 पर अंटार्कटिका की माउंट विंसेंट चोटी पर पहुंचकर 7 समिट का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इस यात्रा में उनके साथ पिता कमांडर कार्तिकेयन भी शामिल रहे। मुंबई के नौसेना बाल विद्यालय की साहसी छात्रा इससे पहले अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एशिया के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर चुकी है। वहीं उन्होंने अंटार्कटिका की 16,050 फीट ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त की है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सर्वधर्म पूजा के साथ शुरू हुआ। एक महीने तक चलने वाले शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 2,361 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। 917 बालिका कैडेटों के साथ इस वर्ष के शिविर में सबसे अधिक बालिका कैडेट भाग लेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 114 कैडेट और उत्तर पूर्व क्षेत्र से 178 कैडेट हैं। शिविर में मित्र देशों के 14 कैडेट और अधिकारी भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस शिविर का मूल उद्देश्य भाग लेने वाले कैडेटों में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व गुणों की गहरी भावना को पैदा करना है। ये वार्षिक कार्यक्रम कैडेटों को प्रशिक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने और सामाजिक सेवा पहलू में भाग लेने के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान करता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 आपदा से निपटने की प्रभावी तैयारियां विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन। आमंत्रित विशेषज्ञ से कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112342105 और 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 0112342105 1050 पर आप कॉल कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल समाचारों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
क्रिकेट में मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच की पांचवीं और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। इस हार के बावजूद भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। 340 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 155 रन पर सिमट गई। विवादित आउट करार दिए जाने से पहले भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक 84 रन बनाए। कमिंस को श्रेष्ठ बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। उन्होंने 49 रन बनाए और पहली पारी में 3 विकेट लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आज सुबह दूसरी पारी में 9 विकेट पर 234 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया अब 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना चुका है। राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में उत्तर प्रदेश रुद्रास का मुकाबला आज वेदांता कलिंग लैंसर्स से होगा। ये मैच रात 8:15 बजे से खेला जाएगा।
लद्दाख में प्रशासन आइस हॉकी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश को इस तरह के खेल का केंद्र बनाना है। इसी श्रृंखला के हिस्से के रूप में लेह में सीईसी आइस हॉकी चैंपियनशिप का 18वां संस्करण इस महीने की 28 तारीख से आयोजित किया गया। इसी श्रृंखला के तीसरे दिन आज 3 मैच खेले जाएंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं जम्मू और कश्मीर भीषण ठंड की चपेट में है। कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कल रात कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में और अधिक बर्फबारी होने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है।
संभागीय प्रशासन पूरे कश्मीर क्षेत्र में बर्फ हटाने, बिजली और पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। जनता को किसी भी असुविधा से सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल के साथ सभी स्तरों पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। तारिक रात्र, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
लद्दाख में शनिवार को बर्फबारी और पिछले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बाद आज सूरज निकला, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि सुबह और रात के समय शीतलहर जारी है और पूरा केंद्र शासित प्रदेश में 0 से नीचे तापमान है। भारत चीन सीमा पर स्थित न्योमा आज लद्दाख का तीसरा सबसे बड़ा ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 21 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं लेह में तापमान 0 से 13.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज और कल भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ठंड और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा कि आज पश्चिमोत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और तटीय तमिलनाडु में तेज बारिश हो सकती है।
पहाड़ी क्षेत्र में 2 दिन तक कोल्ड वेव कंडीशन रहेंगे। बाकी कोल्ड डे, क्योंकि लो क्लाउड का लेयर पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर बनी हुई है, हमारा कोल्ड डे कंडीशन 4.5 डिग्री का से कम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम है। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में।
वहीं उत्तर प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में भी अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मुंबई शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 349 अंक गिरकर 78,350 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,704 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से कक्षा में अंतरिक्ष यान को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाने के लिए 2 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े को पार कर विश्व में 4th स्थान पर पहुंचा। पंजाब और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में कपूरथला से 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी कल तक शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी। और खेलों में मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हराया और हॉकी इंडिया लीग में आज शाम राउरकेला में उत्तर प्रदेश रुद्रास का मुकाबला वेदांता कलिंगा लांसर से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।